सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं।
जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं।
ये सबसे सुहाने पल
शांति। आप सभी तपस्या की लगन में एक बाबा की यादों में समाये हुए हैं। बहुत सुंदर भट्टी का अनुभव भिन्न भिन्न रीति से आपको कराया जा रहा है। जितनी लगन है उतनी अनुभूतियां अच्छी अच्छी होती जा रही हैं। ये सब तैयारियां किस लिए? ड्रामा अनुसार मीठे बाबा ने, दादियों ने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने का गोल्डन चांस सभी भाई बहनों को दिया। टीचर्स ने भी लिया, आप सब भी ले रहे हैं। समय अनुसार जो आज हमें टॉपिक मिली है, अंतिम समय की अंतिम स्थिति, आप सभी अंतिम समय की चेतावनी सुनते रहते हैं। अभी तक ज्योतिषी भविष्यवाणियां करते थे, कुछ समय से ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करना शायद बंद कर दिया है और वैज्ञानिक भविष्यवाणियां करने लगे हैं। आज भी अभी अभी पत्रिका के अंदर पढ़ रहे थे कि ऐसी ज्वालामुखी फटने वाली है जो सारा यूरोप खंड, बहुत सा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, वैज्ञानिक कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसी ही न्यूज थी कि हिमालय के अंदर इतना बड़ा भूकंप आएगा जो उत्तर भारत का बहुत सा खंड खत्म हो जाएगा। अंतिम समय की चेतावनियां अब वैज्ञानिकों ने बहुत फोर्स से देना शुरू किया है। और बाबा तो हम सब बच्चों को जब से पढ़ाना शुरू किया है तब से ही कहता है, बच्चे तुम्हारे सामने अंत समय बहुत समीप है, विनाश का समय बहुत समीप है। हम सब जब विचार करते हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि का कैसे पांचों तत्वों के द्वारा विनाश होगा, प्राकृतिक आपदाएं, बॉम्ब्स अथवा भिन्न भिन्न रीति से इस सृष्टि की सफाई, इतनी बृहत सृष्टि 6 अरब से भी अधिक संख्या हो चुकी है, उन सब की सफाई करने के लिए कितना बड़ा तांडव नृत्य करना होगा। और वो शीघ्र ही होने का समय अभी हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमने उसके लिए क्या तैयारियां की हैं? बाबा ने अंतिम समय अंतिम स्थिति के ऊपर कई मुरलियां चलाई हैं और वर्तमान समय अव्यक्ति सारे जो आ रहे हैं, बाबा की अव्यक्त मुरलियां आप सब ध्यान से पढ़ते हैं, मनन चिंतन भी करते हैं। ड्रामा अनुसार मुझे भी बाबा की मुरलियों से ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य मिला है, इसलिए इस विषय पर आज हम कुछ आपस में रूह रियान करेंगे। समय की बहुत थोड़ी सीमा दी गई है, थोड़े समय में बहुत कुछ बातें हम आपस में करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी रात्रि में आज तपस्या करेंगे, योग भट्टी करेंगे। इस योग भट्टी का, इस तपस्या का उद्देश्य यही है कि हमारी स्थिति इतनी परिपक्व बन जाए, आत्मा इतनी संपन्न और संपूर्ण बन जाए, जो अंतिम समय का वो सहज ही सामना कर सके। क्योंकि अचानक और एवर रेडी का पाठ कुछ समय से बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है कि बच्चे सब कुछ अचानक होगा, कुछ भी बता के नहीं होगा। कई ब्राह्मण इस बात में चलते चलते अलबेले हो जाते हैं कि बाबा कहता तो बहुत समय से आ रहा है, कभी 6 मास का समय, कभी 3 मास का समय, कभी 1 साल का समय दिया, लेकिन समय बीत जाता है और होता कुछ भी नहीं है। ये बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ की रेस कराने के लिए भिन्न भिन्न रीति से समय की सीमा में बांध देता है। लेकिन बाबा के कुछ एक महावाक्य है जो अंतिम समय को सिद्ध कर रहे हैं, उनको हम सब सामने रखते हैं, सामने देखते हैं, तो लगता है कि अभी वो घड़ियां बहुत फास्ट गति से सामने आएंगी। अंत की सबसे पहली निशानी जैसे कोई ज्वाला भड़कने वाली होती है, आग भड़कने वाली होती है, तो पहले थोड़ी मूंझ होती है, चाहे वो आग के सुलगने की मूंझ हो, लगती है तो लगता है कि अभी बहुत जोर से भड़क उठेगी। वर्तमान समय हर प्रकार की समस्याएं जिनकी अति होती जा रही है, चाहे वो प्रकृति के तत्वों के द्वारा समस्याएं आ रही हैं, या विकारों का फोर्स अपना जलवा दिखा रहा है, तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, चाहे कुर संस्कारों का टकराव भी अपनी अति की ओर जाता है। हर आत्मा किसी न किसी रीति से अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है, चाहे वो शरीर की भोगनाओं की अति है, चाहे इविल स्पिरिट्स के वार की अति है, तंत्र मंत्र की विद्या की अति है, अनेक प्रकार से हर आत्मा अति की ओर जा रही है। बीमारियों की भी अति है, साइंस भी अपनी अति की ओर बढ़ती जा रही है, और अंत की निशानी अति ही है। जब तक अति किसी चीज की नहीं होती तब तक अंत नहीं होता, इसलिए हम सबके सामने अति के दृश्य तो आते ही हैं, सब देखते हैं, सुनते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि हर क्षेत्र में अति हो रही है। और ये अति आखिर कब तक? तो जब हमारे सामने अंत समीप दिखाई देता है तो अंत के लिए अंतिम स्थिति का पुरुषार्थ, कितनी उमंग से, अंदर की लगन से, उत्साह से हम सब कर रहे हैं। ऐसे गोल्डन चांस मिलते ही इसलिए हैं कि सभी ब्राह्मण अब एक संकल्प से एक मत होकर ऐसी तपस्या करें, ऐसी स्थिति बना लें जो अंतिम समय में उसका सामना भी कर सके, और अंत की पुकार के समय जब हाहाकार हो, अनेक आत्माएं तड़प रही हों, उस समय बाप दादा के साथ विश्व की आत्माओं को शांति, सुख, स्नेह, साहस, अपनी शक्तियों की किरणें उन आत्माओं को दे सके। तो हम सब ने कहां तक इन शक्तियों का संग्रह अपने पास किया है, समय सामने है, हम सब देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, और उसके आधार से बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहा है कि बच्चे अब समय की पुकार है, मास्टर दाता बनो। क्या हम सब दाता बनने के लिए स्वयं को इतना संपन्न, इतना भरपूर, हर शक्ति से, हर ज्ञान के खजाने से, गुणों से, खुशी और नशे की पॉइंट से स्वयं को कितना संपन्न और भरपूर करते जा रहे हैं? क्योंकि दाता बनने के लिए, दान करने के लिए आवश्यक है जितनी आत्मा अंदर से भरपूर है, तृप्त है, अंदर से संपन्न है, उतना दूसरों को दे सकती है। तो दो चार वर्षों से आप बाबा की एक लहर हर सीजन में देखते सुनते हैं। समय की चेतावनी बाबा जब देते हैं तो कहते हैं कि बच्चे अब मास्टर दाता बनने का समय है, और दाता वही बन सकते हैं जिनकी वृत्तियां बेहद की हैं, हदें नहीं हैं। अगर अभी तक भी हम सब ने कोई हदें बना करके रखी हैं किसी भी प्रकार की, तो मास्टर दाता बनकर के दान देना, बेहद की आत्माओं को सकाश देना, शक्ति देना, हद वाली आत्माएं हद तक दान दे सकेंगी। इसलिए हमारी वृत्तियों में बेहद की भावनाएं आ जाएं, बेहद की दृष्टि बन जाए कि ये सारा परिवार, बेहद का विश्व हमारा है, अपना है, और बेहद के विश्व को सकाश देने के लिए हम सब के पास इतनी आंतरिक शक्तियां जमा चाहिए। बेहद की वृत्ति और आंतरिक शक्तियां जो अंत समय में अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकेंगी, और अंदर से जब क्षमा भावना आत्माओं के प्रति दिल में आ जाती है, जब हर एक की भूलें अंदर से समाते जाते हैं, बेहद की वृत्ति से उन्हें हम दान दे सकते हैं। अगर कोई आत्माएं कोई की कमी और कमजोरियों को नोट करके रखती हैं कि ये तो है ही ऐसे, इन्हें तो इसका फल ही मिलना चाहिए, इनको तो मिलेगा ही ड्रामा में, तो ये भी एक मास्टर दाता की स्थिति नहीं है। जो मास्टर दाता की स्थिति है, जो अंत समय में बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें मनसा द्वारा आत्माओं को सहयोग देना होगा, दान देना होगा, उसके लिए बहुत अंदर से क्षमा भावना, अंदर से शुभ भावना, रहम की भावना से अंदर का संकल्प, बहुत अंदर का भरपूर संकल्प चाहिए कि हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य कराएं। लेने की भावनाएं नहीं, बेहद की भावनाओं में जब लेने की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, स्वार्थ भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, देना है। आज तक कई बार ये कह देते हैं कि सामने वाली आत्मा भी कुछ दे, रिटर्न मिले तो मैं दूं। बाबा हम सबको बहुत बेहद में ले जाता है कि बच्चे कोई कुछ भी दे या न दे। जैसे बेहद घर में आप मधुबन में आते हैं, कोई भी नए या पुराने नए गेस्ट भी आ जाते हैं, उन्हें कुछ न कुछ प्राप्ति की अनुभूति होती है, और यही एक विशेषता उन्हें स्वर्ग की अनुभूति कराती है। कई बार हम उनसे प्रश्न कर देते हैं, पूछ देते हैं कि आप सब अनुभव में क्यों कहते हैं कि मधुबन मुझे स्वर्ग लगता है, यहाँ आने से स्वर्ग की अनुभूति होती है। स्वर्ग की अनुभूति होने का कारण क्या है? अन्य स्थानों पर, किसी भी बड़े स्थान पर हो जाएं, वहां के पंडे पुजारी, वहां रहने वाले, भावनाओं के अंदर उन्हें कुछ न कुछ प्राप्ति चाहिए, उनके अंदर रहता है ये जो मेहमान आए हैं या जो दर्शनार्थी आए हैं, वो कुछ चढ़ावा चढ़ा दें, कुछ इनसे प्राप्त हो जाए और प्राप्ति की भावनाएं होने के कारण वहां के वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं। और मधुबन का वाइब्रेशन इसीलिए सबको आकर्षित करता है क्योंकि बाबा ने हर बच्चे को दाता बनाया है, लेना नहीं है देना है सबको। और जब अंदर से आत्मा तृप्त है कि किसी से न मुझे मान चाहिए, न शान चाहिए, न महिमा चाहिए, न धन चाहिए, बाबा देने वाला हम सबको दे रहा है, दाता एक है और एक से लेकर के हमें सबको देना है, जब ये स्थिति हमारी सबकी बन जाती है तो आत्माएं सामने आते ही, प्रवेश करते ही कुछ न कुछ प्राप्त कर लेती हैं, पा लेती हैं, कुछ मिलता है उन्हें। और वो बहुत अच्छी खुशी से वर्णन करते हैं कि बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इस प्रकार यदि हम सभी अपने आप को इतना तृप्त, इतना संपन्न, हर पॉइंट में हर ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, सब खजानों की, सभी बातों की अनुभूतियों से अपने आप को तृप्त बनाते जाते हैं, भरपूर करते जाते हैं, चिंतन को सकारात्मक बनाते जाते हैं, तो हमारी ये स्थिति बहुत सहज बनती जाती है कि जो आत्मा सामने आए या जिस आत्मा को हम चाहें दूर बैठे भी अपनी सकाश दे सकते हैं। और विश्व को सकाश देने की अब बात आ रही है क्योंकि समय ऐसा नाजुक आने वाला है जो हम सब बच्चों को बाबा के साथ बेहद विश्व की सेवा पर उपस्थित होना होगा। हदों की सेवाएं नहीं, वाणी की सेवाएं हम करते हैं, अपने शहर की सेवाएं, अपने तालुके की सेवाएं, अपने जोन की सेवाएं करते हैं, लेकिन एक संगठन ऐसा तैयार हो जाए, ऐसे बाबा के बच्चे बेहद वृत्ति वाले तैयार हो जाएं, जो विश्व की आत्माओं को अपनी श्रेष्ठ शक्तिशाली मनसा का दान दे सके, उस समय का आवाहन है, उसके लिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने का ये पुरुषार्थ करने का समय मिला है। जब हम अंतिम स्थिति की बात करते हैं तो बाबा के कुछ एक महावाक्य हमारे सामने बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं, अंदर कानों में गूंजते हैं कि बाबा ने अपनी अंतिम स्थिति, संपन्न स्थिति, कर्मातीत स्थिति किस आधार से बनाई, किस आधार से वो अव्यक्त फरिश्ता बने। तो बाबा ने अपने अंतिम महावाक्यों में बात कही है, बच्चे अंतिम स्थिति माना निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति, निरहंकारी स्थिति, नौ निर्माण धारी स्थिति। ये स्थिति ही अंतिम स्थिति है और उसी स्थिति के लिए हम सब रेस कर रहे हैं। बाबा के भिन्न भिन्न वरदान जब हम मुरलियों में सुनते हैं, परसों एक वरदान बहुत अच्छा दो शब्दों का ही सुन रहे थे कि बच्चे अगर अपनी निर्विकारी फरिश्ता स्थिति बनानी है तो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। जितना जितना आत्मा अपनी आत्म अभिमानी अथवा कहें निराकारी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करती है, तो ये निराकारी स्थिति का अभ्यास अपने आप निर्विकारी स्थिति का अनुभव कराने लगता है। आत्मा जो बॉडी कॉन्शियस में आकर के विकारों के वश हो जाती है, पराधीन हो जाती है, जितना जितना जिसने अभ्यास कर लिया है निराकारी स्थिति में रहने का, विदेही स्थिति में रहने का, अपने अकाल तख्त पर निवास करने का, विकार अपने आप उससे छूटते जाते हैं। आत्मा अनुभव करती है मैं पवित्रता का क्राउन धारण करके चल रही हूँ, उससे दूसरी आत्माओं को भी अनुभव होने लगता है कि इसके वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं, इसकी दृष्टि में बहुत शक्ति है, इसके चेहरे पर बहुत तोज है, ओरा है, ये सब पवित्रता की निशानियां हैं, निर्विकारी स्थिति की निशानियां हैं। और जितना जितना हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करते रहते हैं, देह से डिटैच होने का अभ्यास करते हैं, एक सेकेंड में ब्रेक लगाने का अभ्यास करते हैं, संकल्पों को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, ये अभ्यास हमें निराकारी स्थिति की अनुभूति कराता और इससे आत्मा निर्विकारी बनती जाती है, पावन बनती जाती है। लेकिन निर्विकारी के साथ साथ जब निरहंकारी शब्द आता है, वैसे तो विकारों में सब विकार समाये हुए हैं, निर्विकारी माना पांचों विकारों पर विजय, लेकिन निरहंकारी शब्द अलग से प्रयोग किया गया है। बाबा ने इसका बहुत गहरा पुरुषार्थ किया। आज भी बाबा का एक स्लोगन था, बच्चे मैं की बजाय बाबा बाबा करो, अंदर से बाबा बाबा निकले, आत्मा इतनी निरहंकारी बन जाए। कई बार जब बुद्धि अच्छे कार्य करती है, योग्यताएं आ जाती हैं, किसी भी प्रकार की योग्यताएं जब हमारे अंदर आती हैं, जब हम किसी भी प्रकार से यज्ञ में आगे बढ़कर सहयोग देते हैं, तो सहयोग देने वाली आत्माएं और विशेष करके बुद्धिमान आत्माओं को कई बार चलते चलते अहम का भूत, अहंकार जिसको बाबा कहता है, सूक्ष्म रूप में अंदर में प्रवेश कर लेता है। योगी आत्माओं को भी अहंकार आ जाता है, योग का भी अहंकार आ जाता है कि मुझे मेरा योग बहुत अच्छा है, मैं जिसे चाहूं उसे टच कर सकता हूं, मुझे बाबा की बहुत अच्छी टचिंग, अच्छी प्रेरणाएं आती हैं, जिसको बाबा कई बार मुरली में कहता है कि श्रीमत में बच्चे अपनी बुद्धि की मत ऐड कर देते हैं। ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है, और ये अहंकार जब तक नहीं खत्म हुआ, जब तक आत्मा इतना निर्माण चित नहीं बनी कि सब कुछ कराने वाला करण करामन हार कौन, हमारा बाबा है और बैठा है हमारे पीछे, हम सब से करा रहा है, हम सबको निमित्त बना करके अपने सब कार्य करा रहा है, जब तक इतना अंदर की स्मृति को पक्का नहीं बनाया है, तब तक निरहंकारी स्थिति रहे कि मैं आत्मा अस्तित्व समाप्त कर दूं अपना, मैं पन का अस्तित्व समाप्त हो जाए, बाबा ही कराने वाला है, बाबा ही करा रहा है। कई बार बाबा करा रहा है इस बात में भी अभिमान आ जाता, मेरे द्वारा बाबा करा रहा है, इसलिए इसको बहुत महीनता से समझ करके जब आत्मा इतनी निर्माण चित्त, नम्र चित्त बन जाती है, तब वो नव निर्माण का कार्य कर सकती है, नहीं तो कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन का कार्य हो जाता है, कंस्ट्रक्शन की बजाय। हम सबको बाबा ने नव निर्माता बनाया है, नई सृष्टि के निर्माण के लिए, स्थितियों के निर्माण के लिए हम सब निमित्त बने हुए बाबा के बच्चे हैं। लेकिन चलते चलते कई बार नव निर्माण करने वाली आत्माएं अहम में आकर के, सूक्ष्म अहंकार के वश कईयों की स्थिति को बिगाड़ने के निमित्त बन जाती हैं। निर्माण करने की बजाय अगर किसी को स्थिति को बिगाड़ दिया जाए, तो एक बहुत सूक्ष्म बोझ चढ़ जाता है। इसलिए सदा ये टाइटल बाबा का स्मृति में रहता है कि हम सब नव निर्माता हैं, निर्माण करने वाली हैं। निर्माण क्या करना है? बिगड़ी को बनाना है, नर्क को स्वर्ग बनाना है। जिस बात में बिगड़ चुकी है, दुनिया बिगड़ गई है, किसी की स्थिति बिगड़ गई है, कोई चीज बिगड़ गई है, कोई कार्य बिगड़ गया है, निर्माण करने वाली आत्माएं बिगड़ी को बनाने के निमित्त हैं। तो सदा ही स्मृति, जैसे बाबा का एक महान कार्य है, बाबा आया ही इसलिए है, बाबा का कर्तव्य ही भोलानाथ के रूप में जब हम उसका वर्णन करते हैं, बिगड़ी को बनाने वाला है। तो हम सब जो बिगड़ गई है उसका निर्माण करने के निमित्त हैं, और वो निमित्त सेवा तभी हो सकती है जब आत्मा बिल्कुल निरहंकारी स्थिति में रहे, मैंपन अंश मात्र समाप्त हो जाए। चांस मिला कर लिया, लेकिन मैं ही करूं, मेरे में ही योग्यताएं हैं, मेरे बिना ये कार्य नहीं हो सकता है। कई बार जहां पुराने भाई बहने इकट्ठे होते हैं, ये टकराव सूक्ष्म रीति से उत्पन्न होता है, और वहां पर निर्माण का कार्य डिस सर्विस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये चारों बातें अंतिम स्थिति के लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं। जो स्थिति बाबा ने अपनी बनाई साकार में, इसी स्थिति से वो संपन्न बने, संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। निराकारी स्थिति में, जितना निराकारी स्थिति में रहे उतना, इतना इंद्रियां शांत और शीतल हो गई, जो बच्चे बाबा की गोद में भी जाते थे तो उन्हें अनुभव ही नहीं होता था कि हड्डी और मांस का कोई शरीर है। इतना बाबा ने मेहनत पुरुषार्थ किया, शुरू से लेकर के ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ की कहानी बहुत वंडरफुल है। एक किताब सन 36 के पहले की हमें मिली थी सिंधी भाषा में, जिसका कई बार वर्णन आता है मुरलियों के अंदर, कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कैसे शुरू शुरू में मेहनत की। आत्मा राजा है, आत्मा मालिक है, मैं आत्मा हूं, इन मन और बुद्धि की मालिक राजा हूं। बाबा ने एक एक को, एक एक कर्मचारी को जैसे अपने सामने वजीर के रूप में हाजिर करके उसे आर्डर दिया, मेहनत की, और उस मेहनत के फलस्वरूप इतनी आत्मा अंदर से पावन बन गई, परम पावन ने प्रवेश किया। उसकी शक्ति तो है ही, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा ने भी बहुत अच्छी मेहनत करके, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर लिया। साकार में भी दादियों के द्वारा, जिन भाई बहनों ने पालना ली है उनके द्वारा हम सुनते हैं कि बाबा के एक 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 कर्मिंद्री, एक एक हाथ पांव, जो इंद्रियां, ऐसे लगती थी जैसे कोई फूल की हो, इतनी कोमल, कोई भी प्रकार का देह का भान नहीं रहा। तो ये स्थिति तभी बनी जब निराकारी स्थिति में, निर्विकारी स्थिति में, निरहंकारी स्थिति में बाबा रहे, और वैसी स्थिति हम सब अपनी बना लें। मैं समझता हूं इस भट्टी का यही एक उद्देश्य है, इसी लक्ष्य से सभी तपस्या कर रहे हैं कि हम सब इन चारों स्थितियों को सहज ही प्राप्त कर लें। इसके आधार से ही जो बाबा अभी वर्तमान समय, पिछले वर्ष मुक्ति वर्ष के रूप में हमें प्रेरणाएं दी, मुक्त हो जाओ बच्चे कर्म बंधनों से, संस्कारों से, और इस वर्ष प्रेरणा दी संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। संस्कार परिवर्तन की हम सब भट्टियां कर रहे हैं, यही स्थिति कर्मबंधन मुक्त स्थिति, कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगी, आत्मा को नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाएगी। सारे ज्ञान की पढ़ाई का सार लास्ट में आता है महामंत्र के रूप में, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और वो नष्टो मोहा स्थिति जितनी कर्म बंधनों से मुक्त होती जाती है उतनी सहज बनती जाती है। सबसे अगर हम बंधनों के वर्णन में जाते हैं तो बहुत बड़ा विस्तार बाबा ने सुनाया है, आप सब भी अनुभवी हैं, बहुत सी क्लासेज, बहुत सी पॉइंट्स पिछले वर्षों में भेजी गई हैं कि कौन कौन से ऐसे बंधन हैं जो आत्मा को जकड़े हुए हैं, जुड़ने का अनुभव करने नहीं देते हैं, श्रेष्ठ स्थिति बनने नहीं देते हैं। हम आपको वर्तमान समय के हिसाब से बाबा की प्रेरणाओं के हिसाब से 5 मुख्य बंधन जो आत्मा को उड़ती कला की अनुभूति करने नहीं देते, उन पर प्रकाश डालेंगे 5-7 मिनट में। सबसे पहली बात है, बाबा चाहते हैं अपने बच्चों से कि मेरे बच्चे व्यर्थ और नेगेटिव बातों से मुक्त हो जाएं। ये बहुत बड़ा बंधन है। जब तक आत्मा अपने सकारात्मक चिंतन में नहीं रहना जानती, सीखती नहीं है, ये कला उसे नहीं आ गई है, चिंतन को श्रेष्ठ बनाने की कला। बाबा की पढ़ाई, बाबा की शिक्षाएं, बाबा की मुरलियां हमें यही प्रेरित करती हैं कि कितनी भी नेगेटिव सीन हो, कितनी भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करने वाली बातें हों, लेकिन अगर आपने बाबा की मुरलियों पर चिंतन किया हुआ है, ज्ञान को अंदर से घोटा है, अपने से लगाया हुआ है, तो आने वाली बातें जो व्यर्थ और नेगेटिव की उत्पत्ति करती हैं, वो व्यर्थ और नेगेटिव सहज समाप्त होता जाता है, ये बंधन आत्मा से छूटता जाता है। लेकिन अगर हमारा चिंतन सकारात्मक नहीं बना है, अगर विचार श्रेष्ठ नहीं है, ये कला नहीं आई है, मुरली सुन ली, उस पर चिंतन नहीं किया, उसे विटामिन्स के रूप में ग्रहण नहीं किया, शक्ति नहीं पैदा हुई, तो चिंतन कहीं न कहीं से नेगेटिव चल जाते हैं, क्योंकि दुनिया नेगेटिव बन गई है, वायुमंडल नेगेटिव है, व्यक्तियों के विचारधाराएं नेगेटिव हैं, और हम सब नेगेटिव दुनिया के बीच में, उस वायुमंडल के बीच में रहते हैं। उसमें रहते हुए हमारे ऊपर व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव न हो, उसके लिए बहुत ध्यान देने की बात है कि आत्मा निरंतर श्रेष्ठ चिंतन करने की आदती बन जाए, अभ्यास हो जाए कि बाबा की मुरली सुनी है, बाबा की एक पॉइंट भी मुझे अच्छी लगी है, मुझे इसी पर चिंतन करना है, इसको ABC विटामिन के रूप में ग्रहण करना है। चाहे आत्मा का ज्ञान ए विटामिन के रूप में यूज किया, बाबा की बातें बी विटामिन के रूप में यूज कर ली, क्रिएशन की बातें, ड्रामा की बातें सी के रूप में यूज कर ली, कि ABC विटामिन, भिन्न भिन्न रीति से अगर हम ज्ञान को यूज करते हैं, तो आत्मा बहुत शक्ति संपन्न बनती जाती है और उसकी विचारधाराएं पॉजिटिव होती जाती हैं। ये बंधन जो व्यर्थ और नेगेटिव का है वो सहज समाप्त होता जाता है। और दूसरा, व्यर्थ संस्कार, संस्कार है लेकिन व्यर्थ संस्कार, और वो कैसे इमर्ज होते हैं, कई बार जब हम समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, सेवा केंद्रों से आते हैं कि इतना समय ज्ञान में चल रहे हैं, इतना योग कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ संस्कार, व्यर्थ बातों में आत्मा उलझी हुई है, विस्तारों में बुद्धि भटक रही है। बाबा कहता है बच्चे अभी समेटने का समय है, घर चलने का समय है, विस्तारों को समेट लो, उलझो नहीं किसी बात में, फैलाओ नहीं, फैला करके विस्तार करके अपनी बुद्धि को फंसा न दो, फंसने की बजाय मुक्त हो जाओ। लेकिन कई बाबा के बच्चे भी चलते चलते बहुत निर्बंधन है, लेकिन निर्बंधन होते हुए भी कोई न कोई नया बंधन क्रिएट कर लेते हैं। जब वापस चलने का समय है, हम सबको कहते हैं चलना है, तो चलने की तैयारी ये है कि सब कुछ समेटा हुआ हो। कल जाना है आप सबको, तो अभी से सब आपने समेट लिया होगा या कर लेंगे, सब कुछ समेट लें भाई, अपना जो लाए हैं सामान, जो खरीदा है सामान, उसकी पैकिंग कर लें। और हम सबकी बुद्धि में है कि अब बाबा कहता है बच्चे अचानक किसी समय बुलावा आएगा और चलना है, तो क्या हमने अंतिम समय के लिए ये तैयारी कर ली है? विस्तारों में जो बुद्धि का फैलाव है, जो अनेक विस्तार बना करके रखे हैं, चाहे वो उलझनों के हैं, झमेलों के हैं, हमने देखा एक बहुत बड़ा प्रभाव आत्माओं के ऊपर, आत्माओं का पड़ जाता है। चाहे वो प्रभाव डाल देती हैं आत्माएं अपना, या प्रभाव में आ जाती हैं, ये भी एक बहुत व्यर्थ का संस्कार है, प्रभाव में आना या प्रभाव डाल देना, किसी के दबाव में रहना या किसी पर अपना दबाव बना करके रखना। जो आत्माएं इस प्रकार के संस्कारों में उलझी हुई हैं, मोटे मोटे संस्कारों से मुक्त हो जाती हैं, लेकिन ये सूक्ष्म संस्कार जो व्यर्थ के हैं, आत्मा उनसे अगर मुक्त नहीं है तो ये व्यर्थ संस्कार भी कई बार विकर्म करा देते हैं, पाप कर्म करा देते हैं, नया बंधन क्रिएट कर देते हैं। तो अभी 9:30 बज रहा है, हम 3 बातें आपको और सुनाएंगे, केवल 5 मिनट 3 मिनट के गीत में आप सभी अपनी निराकारी स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव भ्रकुटी आसन पर बैठकर इस देह के भान से डिटैच होकर के अपने चारों ओर एक लाइट का घेरा निर्माण करके इस भ्रकुटी आसन पर बैठकर बाबा के पास बुद्धि के विमान से उड़कर पहुंच जाएं। और हमने आपको जो 5 बातें कही थी, 2 बातों का थोड़ा सा विस्तार किया है, 3 बातें मैं और केवल 2 मिनट में सुना देता हूं। एक व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त बनने की बात, व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनने की बात, और तीसरी सबसे आत्मा जो बंधन में पिंजरे में फंसी है, वो देह के पिंजरे में कर्मेंद्रियों के अधीन बन गई है, जितना जितना वो अपनी अधिकारी स्थिति में, स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहती है, ये देह का पिंजरा, ये देह का बंधन सहज ही छूटता जाता है, इससे भी आत्मा नष्टो मोहा बनती जाती है। 4 बात संबंधों की है, संबंधों के बीच में रहते हुए संबंधों के प्रभाव से आत्मा मुक्त रहे, उनके प्रति स्वार्थ का लगाव न हो, सेवा का संबंध हो। जब संबंधों में रहते न्यारे और प्यारे स्थिति में बाबा के समान रहते हैं तो ये बंधन भी सहज छूटता जाता है। और 5वां बहुत आकर्षित करते हैं वर्तमान समय के साधन पदार्थ और वैभव के रूप में, इनका भी एक बहुत बंधन है आत्मा को। इसलिए जब हम सभी बंधनों को सूक्ष्म रीति से काट करके सहज याद नहीं लेकिन शक्तिशाली याद से, ज्वाला रूप की याद से, दृढ़ प्रतिज्ञा वाली याद से, तपस्या से, जब हम इन कड़े बंधनों को काटकर मुक्त स्थिति को प्राप्त करेंगे तब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्थिति, जो अंतिम स्थिति है, उसको प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अंतिम स्थिति प्राप्त करने के लिए आज सभी रात भर योग तपस्या करेंगे, जो जितना समय बैठ सकेगा। अभी आप सबसे पूछा जाएगा कि कौन कितना समय बैठेगा, तो वो बहुत सहज रीति से भले जितना समय आप बैठ सकें, लेकिन जागृत अवस्था में बहुत प्यार से, बहुत दिल की भावनाओं से बाबा को अंदर ही अंदर इतना थैंक्स देते हुए, जैसे बस बाबा और मैं, दूसरा कोई नहीं है। इतने बड़े हाल में अगर कोई बैठा भी है, बहुत लोग भी हैं, संगठन भी है, फिर भी मैं और बाबा अकेला है, और अकेले में जैसे बस बाबा के साथ बातें हो रही हैं, शक्तियां ले रहे हैं, बाबा मुझे शक्ति संपन्न बनाता जा रहा है, अपने संग का रंग लगाता जा रहा है, ऐसी योग तपस्या करने का चांस है। जो जितना समय बैठ सके आराम से बैठे और बाबा की शक्तियों का अनुभव करके जो ऐसे सूक्ष्म में संस्कार हैं उनको परिवर्तन कर लें, ऐसी तपस्या आज करनी है। ओम शांति।